एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने अमेरिकी राजनीति में कह सकते हैं कि काफी हलचल मचाई थी। हिलेरी क्लिंटन की व्हाट हैपेंड।
जी, ये किताब दरअसल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में जो उनकी हार हुई उसका उनका अपना विश्लेषण है।
हाँ, और ये सिर्फ एक नेता की हार की कहानी नहीं है, मतलब ये एक ऐतिहासिक घटना का वो नजरिया है जो बिल्कुल अंदर से आता है।
बिल्कुल सही। और देखिए, हिलेरी क्लिंटन का नाम अमेरिकी राजनीति में कोई नया नहीं है। वो पहले फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं, फिर न्यूयॉर्क से सेनेटा बनी
और विदेश मंत्री भी रही ओबामा के समय में।
जी हाँ, दुनिया भर में उन्होंने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन शायद जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो अमेरिका के इतिहास में किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार थीं। तो उनका जो अनुभव है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो इस किताब को बहुत अहम बना देता है।
और इसीलिए ये किताब और ये चर्चा आज भी उतनी ही जरूरी है ना? ये सिर्फ गुजरे वक्त की बात नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किताब अमेरिकी लोकतंत्र की जो आज की हालत है, मीडिया का जो बदलता रोल है, और खासकर जो महिलाएं लीडरशिप में आती हैं उन्हें किस तरह की अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
हाँ।
इन सब पर सोचने को मजबूर करती है, और क्योंकि वो खुद उन घटनाओं के बिल्कुल बीच में थी,
केंद्र में थी।
हाँ, केंद्र में थी, तो उनका नजरिया जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस सफर और उनके विश्लेषण को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
जरूर। अगर हम उनके शुरुआती जीवन को देखें तो एक चीज साफ दिखती है, वो है मुश्किल हालात में टिके रहने की क्षमता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं।
लचीलापन।
जी, क्लिंटन अक्सर इसका क्रेडिट अपनी माँ को देती हैं, डोरोथी को, जिनका अपना बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था।
अच्छा,
तो शायद वो सीख उन्हें वहीं से मिले। और उनके करियर की शुरुआत में भी एक दिलचस्प चीज है। वॉटरगेट स्कैंडल की जब जांच चल रही थी,
हाँ सुना है,
तब वो एक युवा वकील के तौर पर हाउस जुडिशरी कमेटी के लिए काम कर रही थी। तो मतलब राजनीति की पेचीदगियां और पब्लिक लाइफ की जो सच्चाइयां हैं उनसे उनका सामना काफी पहले हो गया था।
सही बात है। और उनका पब्लिक करियर देखें तो कई पड़ाव रहे, पहले आर्कनसास की फर्स्ट लेडी, फिर व्हाइट हाउस में 8 साल देश की फर्स्ट लेडी के तौर पर।
जी, और उस दौरान भी वो सिर्फ फर्स्ट लेडी नहीं थी, उन्होंने हेल्थ केयर सुधार जैसे मुद्दों पर काफी काम किया था।
हाँ, पॉलिसी में काफी इन्वॉल्व थी। फिर वो खुद राजनीति में आई, न्यूयॉर्क से सीनेटर बनी 2001 से 2009 तक,
और फिर 2009 से 2013 तक विदेश मंत्री,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दुनिया भर के नेताओं से मिलना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर काम करना। अनुभव तो जबरदस्त था। हाँ, अनुभव तो था, लेकिन सफर आसान नहीं था। जैसे आपने कहा, 2008 में उन्हें अपनी ही पार्टी में, डेमोक्रेटिक पार्टी में, बराक ओबामा से हार मिली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए।
जी, और फिर 2016 में भी प्राइमरी में बर्नी सैंडर्स ने उन्हें कड़ी टक्कर दी।
हाँ,
क्लिंटन अपनी किताब में इस बात का जिक्र करती हैं कि सैंडर्स के कुछ हमले, खासकर उनके वॉल स्ट्रीट कनेक्शन को लेकर जो बातें कही गईं,
हाँ,
वो काफी तीखे थे।
जी, वो काफी तीखे थे, और उनका मानना है कि उन हमलों ने पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं वो दरारें पैदा कर दी जिन्हें बाद में जनरल इलेक्शन के दौरान भरना, पार्टी को पूरी तरह एक करना, वो मुश्किल हो गया। और फिर आया 2016 का वो पल जब वो पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी एक मेजर पार्टी की। ये उपलब्धि तो बहुत बड़ी थी,
ऐतिहासिक थी।
ऐतिहासिक, लेकिन किताब बताती है कि इसके साथ चुनौतियां भी अभूतपूर्व थीं। उन्हें लगातार एक अजीब सी कसौटी पर कसा जा रहा था, वो लाइकेबिलिटी वाली बात है ना।
हाँ, पसंदगी, ये शब्द तो जैसे उनके साथ चिपक ही गया था दशकों से।
और ऐसा लगता था जैसे डबल स्टैंडर्ड्स हो। कभी कहा गया कि बहुत इमोशनल हैं, कभी कहा गया कि अरे ये तो रोबोट जैसी हैं, कोई फीलिंग ही नहीं।
बिल्कुल, कभी कमजोर तो कभी जरूरत से ज्यादा आक्रामक। मतलब एक ही इंसान के लिए इतने विरोधाभासी लेबल।
हाँ, ये सोचना भी अजीब है।
और किताब यही तर्क देती है कि ये सिर्फ हिलरी क्लिंटन की बात नहीं, अक्सर जो महिलाएं पावर में होती हैं उन्हें इस तरह की एक असंभव सी कसौटी का सामना करना पड़ता है, जहां ताकत को लोग आक्रामकता समझ लेते हैं और भावना को कमजोरी। और अनुभव की बात करें तो वो तो था ही, घरेलू नीति, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, हर क्षेत्र में।
और विडंबना देखिए, 2016 के चुनाव में उन्हें पॉपुलर वोट यानी सीधे जनता के वोट डोनाल्ड ट्रंप से करीब 30 लाख ज्यादा मिले थे।
हाँ, ये बात बहुत लोग भूल जाते हैं।
जी,
लेकिन अमेरिका का जो सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज का,
हाँ, वो थोड़ा पेचीदा है।
हाँ, उसके तहत वो हार गईं। हर राज्य के कुछ इलेक्टर होते हैं और आपको उन इलेक्टर्स का बहुमत चाहिए होता है, न कि सीधे जनता के वोटों का।
तो ये भी एक फैक्टर रहा। अब उनकी विरासत को कैसे देखें, ये भी एक सवाल है। एक तरफ तो उन्होंने यकीनन रास्ते खोले हैं महिलाओं के लिए राजनीति में,
बिल्कुल बाधाएं तोड़ी हैं।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जैसा ये किताब बताती है, शायद उनकी हार का जो विश्लेषण है वो खुद एक विरासत बन गया है। मतलब अमेरिकी लोकतंत्र के सामने जो खतरे हैं, जैसे भारी दखल, गलत सूचना, उनको समझने का एक जरूरी दस्तावेज।
हाँ, ये उनकी विरासत का एक अनचाहा पर शायद बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और किताब पढ़ते हुए उनके कुछ जो कोर बिलीव्स हैं, जो मूल्य हैं, वो भी सामने आते हैं।
जैसे?
जैसे पब्लिक सर्विस को वो एक ड्यूटी की तरह देखती हैं, एक कर्तव्य, जिसके लिए वो दो शब्द इस्तेमाल करती हैं, ग्रिट एंड ग्रैटिट्यूड, यानी दृढ़ता और कृतज्ञता, मुश्किलों में टिके रहना और जो मौके मिले उनके लिए आभारी होना।
वो लचीलापन वाली बात फिर से आ गई
जी, और वो क्रांतिकारी बदलावों की जगह व्यवहारिक और धीरे धीरे होने वाली तरक्की, यानी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस में ज्यादा यकीन रखती है।
अच्छा, मतलब बड़े बड़े वादों की जगह ठोस काम।
हाँ, और पॉलिसी सब्सटेंस, यानी नीतियों का जो असल सार है, उसे वो बहुत महत्व देती है। उनका मानना है कि ये चीज चुनाव प्रचार के शोर शराबे और ड्रामे में कहीं खो गई थी।
ये एक अहम बात है।
और किताब में वो लगातार एक संतुलन बनाने की कोशिश करती दिखती है ना। एक तरफ तो वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हैं बिल्कुल,
जैसे वो ईमेल सर्वर वाला मामला या वॉल स्ट्रीट को दी गई स्पीच जिनकी वजह से उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी।
हाँ,
लेकिन साथ ही वो बाहरी ताकतों पर भी उंगली उठाती हैं जिन्होंने नतीजों पर असर डाला, जैसे रूस का कथित दखल,
जेम्स कोमी।
हाँ, FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी की वो चिट्ठी, मीडिया का रोल और समाज में जो लिंग भेद है।
जी, उनका वो एक कोट है ना, या उसका जो भाव है कि मैं अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है।
हाँ, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये स्वीकार भी करती हैं और बारी फैक्टर्स का विश्लेषण भी करती हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए अब उन तीन खास मोड़ों या स्थितियों पर फोकस करते हैं जिन्हें क्लिंटन अपनी हार के लिए सबसे अहम मानती हैं। पहला तो यही ईमेल सर्वर वाला विवाद और चुनाव से ठीक पहले FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी का रोल।
हाँ, ये कहानी तो बहुत नाटकीय है। हुआ ये कि विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने एक प्राइवेट ईमेल सर्वर इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने माना कि ये गलती थी। इस पर महीनों मीडिया में हंगामा रहा। फिर जुलाई 2016 में डायरेक्टर कोमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हाँ, लापरवाही तो हुई है, अत्यधिक लापरवाही, लेकिन क्रिमिनल केस चलाने लायक सबूत नहीं है।
अच्छा, तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था।
हाँ, ऐसा लगा था, लेकिन फिर चुनाव से सिर्फ 11 दिन पहले 28 अक्टूबर 2016 को कोमी ने कांग्रेस को एक चिट्ठी भेज दी।
अरे बाप रे, 11 दिन पहले?
जी हाँ, और चिट्ठी में कहा कि FBI को कुछ नए ईमेल मिले हैं जो शायद इस केस से जुड़े हो सकते हैं और उनकी जांच होगी। बस इस चिट्ठी ने तो जैसे राजनीतिक भूचाल ला दिया।
जाहिर है, विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया होगा।
बिल्कुल। मीडिया कवरेज फिर से ईमेल्स पर फोकस हो गया और सबसे अजीब बात यह हुई कि चुनाव से सिर्फ 2 दिन पहले 6 नवंबर को कोमी ने एक और चिट्ठी जारी की।
फिर से?
हाँ, और कहा कि जांच पूरी हो गई है और जुलाई वाले नतीजे ही सही हैं, मतलब फिर से क्लीन चिट।
ये तो बहुत अजीब है। पहले शक पैदा किया, फिर खारिज कर दिया, लेकिन तब तक तो शायद देर हो चुकी थी।
हाँ, क्लिंटन का यही तर्क है। वो अपनी किताब में नेट सिल्वर जैसे एक्सपर्ट्स के डेटा का हवाला देकर कहती हैं कि 28 अक्टूबर वाली चिट्ठी ने उनके कैंपेन की जो बढ़त थी उसे रोक दिया, खासकर वो राज्य जहां टक्कर कांटे की थी, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन।
हाँ, स्विंग स्टेट्स।
जी, वहां जो वोटर्स आखिरी वक्त में फैसला कर रहे थे वो शायद इस विवाद की वजह से ट्रंप की तरफ मुड़ गए। उनका मानना है कि ये दखलंदाजी नतीजे बदलने के लिए काफी थी।
बाप रे, ये ईमेल वाला मामला तो वाकई बहुत उलझावा लगता है। लेकिन किताब में बाहरी दखल की बात सिर्फ यहीं तक नहीं है ना, रूस का क्या रोल था उनके हिसाब से?
हाँ, दूसरा बड़ा फैक्टर जिसे क्लिंटन बहुत विस्तार से बताती हैं, वो है रूसी सरकार का कथित हस्तक्षेप। वो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देती हैं।
हाँ,
और कहती हैं कि ये सिर्फ कुछ हैकिंग नहीं थी बल्कि ये एक सोचा समझा मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन था अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने के लिए।
अच्छा, किस तरह का ऑपरेशन?
इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कमेटी DNC और क्लिंटन के कैंपेन चेयरमैन जॉन पोडेस्टा के ईमेल्स हैक किए गए।
हाँ, ये खबरें आई थी।
जी, और फिर उन हजारों ईमेल्स को विकीलीक्स जैसी वेबसाइट्स के जरिए धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक टाइमिंग के साथ रिलीज किया गया
ताकि लगातार नेगेटिव खबरें बनी रहें।
बिल्कुल, कैंपेन को लगातार डिफेंसिव मोड में रखा जाए, उनके अंदरूनी कामकाज पर सवाल उठें, भ्रम फैले, और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर, फेसबुक ट्विटर पर बड़े पैमाने पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाया गया।
अच्छा, वो भी इसी का हिस्सा था।
हाँ, ऐसे मैसेज जो वोटर्स को बांटें, क्लिंटन की इमेज खराब करें या लोगों को वोट देने से ही डिस्करेज करें। क्लिंटन का मानना है कि इसके पीछे शायद पुतिन का पर्सनल गुस्सा भी था, क्योंकि क्लिंटन ने पहले रूस के चुनावों पर सवाल उठाए थे। लेकिन बड़ा मकसद था अमेरिकी लोकतंत्र में अस्थिरता लाना और क्लिंटन को जीतने से रोकना। किताब इसे अमेरिकी डेमोक्रेसी पर एक अभूतपूर्व हमला बताती है।
ये तो काफी गंभीर आरोप है। और तीसरा निर्णायक मोड़, वो शायद कोई एक घटना नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली स्थिति थी, वो लिंग भेद वाली बात।
जी, पहली महिला उम्मीदवार बनना ऐतिहासिक था, लेकिन किताब तर्क देती है कि इसी वजह से उन्हें ऐसी स्क्रूटनी और आलोचना झेलनी पड़ी जो शायद किसी पुरुष उम्मीदवार को उस हद तक ना झेलनी पड़ती। वो फिर से उसी लाइकेबिलिटी यानी पसंद किए जाने वाली प्रॉब्लम पर आती हैं जिससे वो अपने पूरे करियर में जूझी।
हाँ।
और वो इसे सिर्फ अपनी दिक्कत नहीं मानती, बल्कि कहती है कि ये समाज में महत्वाकांक्षी पावरफुल महिलाओं को लेकर जो एक असहजता है, ये उसका प्रतीक है।
वो डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात भी।
बिल्कुल, कैसे उनके कपड़ों पर, उनकी आवाज पर, उनके हंसने पर, हर चीज पर पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा नजर रखी जाती थी, टिप्पणी की जाती थी, कैसे उन्हें एक ही वक्त में ज्यादा सख्त और ज्यादा भावुक बताया जा सकता था।
हाँ, ये तीसरा मोड़ जैसा आपने कहा कोई एक घटना नहीं थी बल्कि नॉमिनेशन के बाद ये स्थिति और बढ़ गई।
जी, इसने उनकी पब्लिक इमेज को आकार दिया और कहीं ना कहीं उनके कैंपेन पर भी असर डाला। ये दिखाता है कि राजनीति में जेंडर कितना जटिल रोल निभाता है, अक्सर अनदेखे तरीकों से।
इन सारे राजनीतिक विश्लेषणों से हटकर अगर देखें तो क्लिंटन के जीवन से, खासकर इस हार के अनुभव से, कुछ गहरे मानवीय सबक भी मिलते हैं, है ना?
बिल्कुल।
शायद सबसे बड़ा तो यही कि इतने ऊंचे लेवल पर फेलियर और निराशा से कैसे उभरा जाए। वो चुनाव की रात का जो अनुभव बताती हैं, बहुत निजी और दर्दनाक शब्दों में, कुचल देने वाला, विनाशकारी।
हाँ, वो पढ़कर लगता है कि पब्लिक फिगर होने के बावजूद हार का दर्द तो उतना ही असली होता है।
बिल्कुल, और यहीं पर फिर से वो लचीलेपन वाली बात आती है। हार के बाद दुख मनाना, शोक करना, लेकिन फिर धीरे धीरे उस सदमे से उभरना और जिंदगी में फिर से कोई मकसद ढूंढना।
जी, वो लिखती हैं किताब में कि चुनाव के फौरन बाद उन्होंने क्या किया। पति और कुत्तों के साथ जंगल में टहलने जाना।
हाँ।
दोस्तों परिवार के साथ वक्त बिताना, योग करना, यहाँ तक कि घर के अलमारियां साफ करने जैसे छोटे कामों में भी उन्हें थोड़ी शांति मिली।
ये दिखाता है कि उभरने की प्रक्रिया अक्सर बहुत छोटी निजी चीजों से शुरू होती है।
हाँ, और फिर धीरे धीरे उन्होंने वकालत के काम और पब्लिक लाइफ में फिर से एक्टिव होने का रास्ता ढूंढा।
ये अनुभव शायद बहुत से लोगों को अपने जीवन के संघर्षों से जोड़ता होगा, चाहे उनका पैमाना कुछ भी हो। किसी बड़ी नाकामी के बाद फिर से उठ खड़े होने की कोशिश, ये तो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं।
निश्चित रूप से, और भी कुछ यूनिवर्सल थीम्स हैं इस किताब में, जैसे पब्लिक लाइफ में स्क्रूटनी का प्रेशर कैसा होता होगा, खासकर सत्ता में बैठी महिलाओं के लिए ये कितना ज्यादा हो सकता है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
एक और अहम बात कि जटिल घटनाओं के जवाब कभी आसान सीधे नहीं होते। 2016 के चुनाव के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारे फैक्टर्स का एक उलझा हुआ जाल था। और आज के दौर में जब इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से आ रही है, तब मीडिया लिटरेसी यानी मीडिया को समझने की क्षमता और क्रिटिकल थिंकिंग यानी खुद की सोचने समझने की शक्ति,
हाँ, वो कितनी जरूरी हो गई है।
बिल्कुल, और आखिर में ये किताब लोकतंत्र की नाजुकता और उसमें नागरिकों की भागीदारी की जरूरत की भी याद दिलाती है।
तो इस पूरी बातचीत और व्हाट हैपेंड के विश्लेषण से अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, निचोड़ निकालना हो, तो वो क्या होंगी? पहली शायद एक भावनात्मक बात है कि सार्वजनिक विफलता का व्यक्तिगत असर कितना गहरा हो सकता है। क्लिंटन जिस तरह अपने दुख और निराशा को बयां करती हैं, वो लिखती हैं एक जगह, कई बार मन करता था बस तकिए में मुंह छिपाकर चीखूं। ये दिखाता है कि पब्लिक ड्यूटी निभाते रहने के लिए कितना जबरदस्त आत्मबल चाहिए, खासकर जब आप अंदर से टूटे हुए हों।
हाँ, वो भावनात्मक ताकत।
दूसरी बात, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि कह सकते हैं कि 2016 का चुनाव किसी एक कारण से नहीं हुआ, वो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था।
कई चीजों का मेल।
जी, जहाँ व्यक्तिगत और कैंपेन की कमियां तो थीं, लेकिन साथ ही अभूतपूर्व बाहरी ताकतें भी थीं, जैसे रूस का दखल, कौमी का दखल, और इनके साथ जुड़े थे गहरे सिस्टमिक मुद्दे जैसे लिंग भेद, मीडिया का डायनामिक्स। इन सब ने मिलकर उस वक्त अमेरिकी लोकतंत्र की कुछ कमजोरियों को सामने ला दिया। ये सिखाता है कि बड़े राजनीतिक बदलावों को समझने के लिए कई परतें देखनी पड़ती हैं।
सही बात।
और तीसरी बात, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, जो शायद हम सबके लिए है।
हाँ बिल्कुल,
कि सूचनाओं और भ्रामक सूचनाओं से भरी इस दुनिया में
जी,
हम सबके लिए क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है,
पहले से कहीं ज्यादा।
हाँ,
किसी भी खबर को, किसी भी बात को वैसे ही मान लेने के बजाय उसके पीछे के फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, इरादे, इन्हें समझना जरूरी है ताकि हम बेहतर नागरिक बन सकें और लोकतंत्र को बचा सकें।
और इसके साथ ही वो दृढ़ता वाली बात,
हाँ,
आगे बढ़ते रहने का जज्बा, बड़ी असफलताओं के बाद भी,
हाँ,
हार शायद अंत ना हो बल्कि कुछ सीखने और नई शुरुआत करने का मौका भी हो।
बिल्कुल, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।